ब्रह्मपते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवत महापुराण से पाठ पंचम स्कंद 25वां अध्याय श्लोक संख्या 6। सैव भगवान अनंत अनंत गुणार्णव आदिदेव उपसंहृतामर्ष रोषवेगो लोकानां स्वस्तय आस्ते। शब्दार्थ सैव वह निश्चय ही भगवान श्री भगवान अनंत श्री अनंत देव अनंत गुणार्णव असीम दिव्य गुणों के सागर आदि देव आदि ईश्वर अथवा आद्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अभिन्न उपसंहृता जिसने इंद्रिय निग्रह किया है अमरसा उसकी असहनशीलता का रोषा क्रोध बेगा बेग या शक्ति लोकानां सभी लोगों के मनुष्यों के स्वस्त्यै कल्याण हेतु आस्ते रहते हैं। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। भगवान संकर्षण अनंत दिव्य गुणों के सागर है जिससे वे अनंत देव कहलाते हैं। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अभिन्न है। इस जगत के समस्त जीवों के कल्याण हेतु वे अपने क्रोध तथा अपनी असहनशीलता को रोके हुए अपने धाम में निवास करते हैं। तात्पर्य अनंत देव का मूल उद्देश्य इस भौतिक सृष्टि को विलय करना है, किंतु वे अपने रोष तथा अमर्ष को रोके रहते हैं। इस जगत की सृष्टि बद्ध जीवात्माओं को भगवान के धाम जाने के लिए एक और अवसर प्रदान करने के लिए ही की जाती है, किंतु अधिकांश जीव इस अवसर का लाभ नहीं उठाते। सृष्टि के बाद वे भौतिक जगत पर फिर से अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं। इन क्रियाओं से अनंत क्रुद्ध हो उठते हैं और संपूर्ण भौतिक जगत को विनष्ट कर देना चाहते हैं, किंतु श्री भगवान होने के कारण वे हम पर दयालु हैं और अपने रोष तथा अमर्ष को रोक लेते हैं। कभी कभी वे अपने रोष प्रकट करते हैं और भौतिक जगत का विनाश कर देते हैं। ओम अज्ञानं तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदे अहं श्री गुरो श्रीयुत पद कमलं श्री गुरुं वैष्णवांश श्री रूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता శ్రీ విశాఖానితం స నమో విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే నమస్తే సరస్వతి దేవే గౌరవాణీ ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాదీ పాశ్చాత్య దేశ తారిణే జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద బోలి హరే కృష్ణ హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే तो इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी भगवान अनंत देव का कुछ गुण का परिचय देते हैं। इसमें मुख्यतः ये कहते हैं अनंत देव का एक मुख्य उद्देश्य है, क्या है? अनंत देव का मूल उद्देश्य इस भौतिक सृष्टि को विलय करना है, खत्म करना है, शेष कर देना है, खत्म। लेकिन शेष करने के लिए तो गुस्सा चाहिए ना, आसान से सहनशील होने से फिर से मारेंगे किसे, है ना? इंटॉलरेंट असहनशीलता अमर्ष और क्रोध रोष अमर्ष और रोष वेग इसी में से भरपूर रहते हैं। लेकिन भगवान है हमारा दुर्दशा देखकर थोड़ा कृपा कर देते हैं, चलो और एक चांस देता हूं। सचमुच भगवान का जो स्थिति है अनंत देव का, एक पूरे भौतिक ब्रह्मांड को आपने बल पर टिका के रखे हैं। इस अध्याय की शुरुआत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अनंत की स्थिति के बारे में। आप अगर पढ़ना चाहते हैं भागवत के पांचवां स्कंद के 25वां अध्याय को पूरा पढ़ लेना, जो 15 श्लोक है सारे उनकी स्तुति है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से कहा, हे राजन, पाताल लोक से 240,000 मील नीचे श्री भगवान के एक अन्य अवतार निवास करते हैं। समझ लो कहां रहते हैं, उनका हेडक्वार्टर कहां है ना? पाताल लोक से भी 240,000 मील नीचे भगवान के एक अन्य अवतार निवास करते हैं, वे भगवान अनंत अथवा संकर्षण कहलाते हैं। वे भगवान महाविष्णु के अंश हैं, वे सदैव दिव्य पद पर आसीन है, किंतु तमोगुणी देवता भगवान शिव के आराध्य होने के कारण कभी कभी तामसी कहलाते हैं। भगवान अनंत सभी बद्ध जीवों के अहं तथा तमोगुण के प्रमुख देवता है। जब बद्ध जीव यह सोचता है कि यह संसार भोग्य है और मैं उसका भोगता हूं, तो यह जीवन दृष्टि संकर्षण द्वारा प्रेरित होता है। इस प्रकार संसारी बद्ध जीव स्वयं को ही परमेश्वर मानने लगता। अहंकार तो स्वयं देते हैं और देख करके गुस्सा होकर भी मार देते हैं। आप क्या बताएं उनको? ये पूरे जो ब्रह्मांड की संरचना इस प्रकार हमें कागज से बता रहा था कि 14 महला के बिल्डिंग विशेष है और जो बीच वाले लोक है वो है सेंट्रल जेल, केंद्रीय कारागार। सेंट्रल में सेंटर में होता है, दिल्ली के सेंट्रल जेल है, प्राय सारे सिटी के सेंटर में जेल बनाया जाता है। सबसे कीमती जगह को जेल बनाने में लगते हैं, बताओ। कई बड़े एरिया लेते हैं, कई एकड़ के जगह, ये कोई डेवलपमेंट वर्क थोड़ी है। लेकिन जरूरी है, सरकार को करेगा सबसे पहले को आके कुछ ना करे ना करे तो जेल तो बनाएंगे, क्योंकि कुछ तो बदमाशी होंगे ही, तो उनके लिए ठीक ठाक करने के लिए हुआ। तो इसीलिए इस सारे लोग से जो बदमाशी हैं, जो नियम तोड़ने वाले हैं, उनको लाकर यहां रखते हैं। किसी लिए, अच्छा जेल में किसी लिए लोग रखा जाता है? सच बताओ, करेक्ट सुधारने के लिए, ये दंड वंड देने का, जो सब धमक जो सब परेशानी कठिनाई देने का उद्देश्य, मूल उद्देश्य क्या है? उनको सुधारे, सुधार कर अच्छा नागरिक बनाए, जा करके अच्छे काम में लगे, इसीलिए लगा दे। तो भगवान ने व्यवस्था इसलिए की है, एक और चांस देना चाहते हैं हम बदमाशों को कि अभी सुधर जाओ, अब मेरे सेवा करो आकर के, आप सब धंधा छोड़ो, मान जाओ हम आपके सेवक है प्रभु, अब सेवा करेंगे, अब नहीं बदमाशी करेंगे। तो ये चांस देने के लिए वो जेल की व्यवस्था किया गया, और जेल में रखते हैं कैदियों को, डालते हैं जो बदमाश नियम तोड़ते हैं, पर हम सब कैदी है, स्पष्ट है हम जेल में आए हैं सब। लेकिन दुर्भाग्य ये है, जेल में आकर के, जेल में कोई कितना दिन, बहुत ज्यादा से ज्यादा बड़ा 15 साल 20 साल तक रुके हैं, उसके बाद तो बोलेंगे खत्म हो तो तो इसी जेल में भी आकर के अपना छोटा सा कोठरी, उसमें कोई होंगे और भी कई कैदी होंगे, इसमें आकर के हम अपने आप को ऐसे सेटल कर लेते हैं, इसके दुख तकलीफ सश्रम कारादंडों की मान करके पूछते हैं हम सेटल हो गया, अभी हम सेटल कर लिया, हाँ 10x12 फ्लैट ले लिया, अब सेटल हो गया। अरे भैया तू जेल में भी सेटल कैसे हो जाएगा, यहां सेटल होने के लिए तो आया ही नहीं, लेकिन हम सेटल होना चाहते। उसी को देखकर गुस्सा होते हैं बदमाशों को, मैं भेजा वहां सुधारने के लिए, वहां जाकर के नारा वो अपने भक्ता भक्त तो फिर करने लगे मेरा ये कोठरी तेरा ये, मेरा ये हिस्सा तेरा ये हिस्सा, अरे तू आया अगर जेल में, वहां तेरे मेरा हिस्सा क्यों कर रहा है? इसके वजह से उनको गुस्सा आता है, गुस्सा होता है तो इसलिए खत्म कर देते, ज्यादा गुस्सा होने से बिल्कुल कंप्लीट सेस कर देते हैं, लय कर देते हैं। तो इसलिए वो नीचे जितने लोग हैं, आप तो पृथ्वी लोक को हिसाब किताब देखे नहीं, अगर कोई आप पढ़े होंगे भूगोल आदि में, पृथ्वी लोक जो प्लैनेट है उसका कोई सपोर्ट है क्या? नीचे से कोई 2-4 खंभा डाले हों, ऊपर को टांगे होंगे, कोई साइड कुछ है, ऐसे सुनने में झूल रहा ना, आपके 2-5 किलो के एक वेट ऐसे सुनने में झुला दो देखो होगा। अरे इतने बड़े हैवी वेट, पूरा समुच्चा पृथ्वी लोक, कुछ सपोर्ट नहीं है, झूल रहा कैसे? हम इतने बड़े बड़े पीएचडी करते हैं न्यूटन्स लॉ के ऊपर, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ये कहां से उनसे निकालता, कहां से निकालता? हम सब कूड़े करकट भरे हुए दिमाग में, यही संकर्षण, उन्हीं के बल से केवल यही लोक नहीं, जितने ब्रह्मांड है सभी ब्रह्मांडों को अपने बल से अपना अपने जागा टिका कर रखे, ऊपर से भी नीचे से भी, ऐसे बल है जहां जो यही घूमते रहो, कई हजारों करोड़ों बिलियंस बिलियंस टन के एक लोग हिल नहीं सकता, वहीं हिलते रहा, नीचे बैठे हैं सहस्र फण लेकर, फण के ऊपर टिका कर रखते, कोई इधर डोल नहीं सकता, थोड़ा सा करवट बदला है तब तो वो भी नहीं बदलाते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं, थोड़ा सा कभी हिल गए, एक आध मिनट भूकंप हो गया, माय गॉड हाल खराब हो जाता है हमारा। तो वो वही असली आकर्षण शक्ति वही है, उनके ग्रेविटी है वही ग्रेविटेशन, ओरिजिनल ग्रेविटेशन पावर, उसको तो हम तक जाने नहीं, और वो एक पेड़ से काम नीचे गिर गया, उसी के ऊपर पीएचडी करते हैं, कितनी मूर्खता है ना। अरे ये पूरा लोक प्लैनेट को गिरने रहे टिका कर रखा है अपने ऑर्बिट में, तो वो इसलिए संकर्षण है, सारे लोक को आकर्षण अपने बल में, इतने नीचे रहते हैं पाताल लोक से भी 2,40,000 मील नीचे अपने क्वार्टर बना के बैठे हैं, बैठ करके समुच्चय ब्रह्मांड को टिका कर रखे हैं अपने बल पर, तो यहां रहते हैं और रह करके अपेक्षा करते हैं जब टाइम आएगा सबको खत्म कर दूंगा। तो भगवान अनंत की आकर्षक दीर्घ भुजाएं, उनके कंगने, उनके आकर्षक ढंग से अलंकृत और पूर्णतया आध्यात्मिक जो उनके बाजूबंद है, हाथ है, उनके शरीर है, श्वेत होने के कारण चांदी के खंभे की तरह प्रतीत होते हैं, वे भगवान की शुभ आशीर्वाद की इच्छुक नागराज कुमारियों उनकी बाहों में अगरु चंदन तथा कुमकुम का लेप लगाती है, वो ऐसे बैठे रहते हैं, चुने चुने नागराज कुमारी जाकर उनकी सेवा करते हैं, अंगराग करते हैं, उनको मसाज करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान अपने क्वार्टर में रहकर के सेवा लेते हैं। उनको सुखदेव गोस्वामी देखकर सुखदेव गोस्वामी आगे बोले, देवता असुर उरग सिद्ध गंधर्व विद्याधर तथा उनके सिद्ध संत जन, अनेक सिद्ध संत जन भगवान के निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं। मद के कारण भगवान विफल प्रतीत होते हैं और उनके नेत्र पूर्ण पुष्पित फूलों की भांति इधर उधर गति करते रहते हैं। वे अपने मुख से निकली मधुर वाणी से अपने पार्षदों देवताओं के प्रमुखों को प्रसन्न करने प्रसन्न करते हैं, कभी कभी प्रवचन भी देते हैं। इसे कहा गया कि जो सनक आदि ऋषि सबसे पहले भागवत उन्हीं से जाकर सुने, क्योंकि सहस्त्र मुख से भगवत गुणगान करते रहते हैं। तो वो असली भागवत वक्ता वही आदि वक्ता भागवत, तो सनकादि ऋषि जाकर उनसे सुने, संख्या मुनि आदि जो परंपरा में उनसे जाकर सुने थे भागवत। वो नीलांबर पहनते हैं और उनके कान में एक कुंडल धारण करते हैं, एक कुंडलधारी, कई जगह भागवत में लिखा गया है एक कुंडलधारी। अपना इधर अटल में दो कुंडल बनाते, एक कुंडल भाग्य एक कुंडल धारण किए हुए रहते हैं। वो ये अपने पीठ पर हल्कू अपने दो हाथ सुदृढ़ से हाथों में पकड़े हुए हैं और इंद्र के समान श्वेत लगते हैं। वे अपनी कटी में स्वर्णिम मेखड़ा और गले में चीर नवीन तुलसी दलों के वैजयंती माला धारण किए हैं। तुलसी दल की मधु जैसी गंध से आकर्षित होकर मधुमक्खियां माला के चारों ओर मंडराती रहती है, जिस माला भी और भी सुंदर लगती है। इस प्रकार भगवान दिव्य लीलाओं से संलग्न रहते हैं। कभी ना मुरझाने वाली पुष्प और तुलसी की माला पहनते हैं, कितने कितने सुंदर अलंकार पहनते हैं। सब नागराज कुमारी उनके सेवा करते हैं, अंगराग आदि कराते हैं। इस प्रकार रह करके और बोलते हैं नीले वस्त्र पहनते, बिल्कुल चांदी की तरह चमचमाते शुद्ध धवल वर्ण है उनके, और अपने मस्ती से रहते हैं आराम से, कभी कभी प्रवचन करते हैं। एक कुंडल धारण किए हुए हैं। आप जानते हैं भगवान क्यों एक कुंडल धारण करते हैं? नित्यानंद प्रभु भी एक कुंडल पहनते हैं, वो भी दोनों बलराम है, दोनों के अलग अलग कारण है, लेकिन है एक ही कुंडल। ऐसे बलराम ने जब ब्रज में थे, एक साथ में दोनों भाई बढ़ रहे थे, तो दोनों एक साथ में कंपटीशन करके दहली पार की। दहली जानते ना किसी बोलते, आजकल तो होता नहीं दहली, क्या समझेंगे। घर के जो दरवाजा होता ना, दरवाजे का निचले भाग जो थोड़ा ऊंचा होता ना, आजकल तो बिल्कुल प्लेन होता है, सिलपट होता ही नहीं, चौकाट बनाना नहीं आता, आजकल से बनाना बंद कर दिया। एक नीचे भी होता है, इस ऊपर से होता है, नीचे भी होता है, उसको दहली बोलते। बच्चे को परिश्रम करना पड़ता है पार करके जाने के लिए। जो घुटरू वन में चलते हैं, इसने आसान से पारने के थोड़ा ताकत हो जाए, उसी को द्वार बंद पार कर गए, मतलब बहुत बड़े अचीवमेंट हो गए। तो कृष्ण बलराम कंपटीशन करके पार किए थे, पहले बलराम पार कर लिए, फिर बलवान है, फिर कृष्ण पार कर लिए, अरे ये बड़े उत्सव हुआ, आज दहली पार कर गए। पार करके नंद आंगन में तो वो पेड़ था कौन सा, भूल गए, अर्जुन पेड़ था, विशाल, दो पेड़ इकट्ठा जुड़ करके थे, जुड़वा पेड़ जमला अर्जुन। तो उसी को तो सारे ब्रजवासी आकर उसको पूछते थे, सब करते थे, सब कुछ मीटिंग सब कुछ हुआ करता था। तो जा करके वहां पर पहुंच गए, पहुंच करके इतने अपने आप को मानते थे कि आज आपने द्वार बंद दहली पार करके आ गया, और एक दूसरे से कितनी बड़ाई करते, तुम क्या मैं भी पार करके आया, क्या समझ रखा है, मैं ऐसा हूं करके सारे बालक आ जाते हैं, सब करके सबको अपना बड़ाई करके, बड़ाई करने के बाद खूब दूसरे से एक दूसरे से कंपटीशन हो गया। लास्ट में भगवान बलराम जो बड़े भाई हैं, छोटे भाई के प्रति अनुज के प्रति अत्यंत स्नेह है उनका, बहुत कुछ आपस में विवाद करके बातचीत हो गए। अंत में भूख लगा, जब सब बच्चे चले गए, वो अपने घर में आना चाहते हैं, मैं बहुत कुछ भला बुरा बोल दिया अनुज को, तो इसलिए कृष्ण थोड़ा मुंह नीचे कर दिए, मैं दो दिन पीछे आया तो क्या हो गया, मैं भी तो आया। तो कृष्ण ने थोड़ा मुंह सुखा दिया, क्योंकि बोले मैं दो दिन पहले आया, तू आज आया दहली पार करते। तो सबके सामने कृष्ण को नीचे दिखा दिया, तो कृष्ण बोले यार देखो भैया भी मुझे ऐसे बोलता है, मैं कमी थोड़ी हूं। तो उनके कृष्ण के मुख के दुख देख नहीं सकते हैं, अग्रज हैं, तो उनको आलिंगन में ले करके उनको चुंबना दे करके बिल्कुल बोले नहीं नहीं कुछ नहीं, हम समान हैं, कोई नहीं, तुम बड़े, तुम तो आज भी आ गए हो। तो ऐसे करके खूब बद गाढ़ आलिंगन में ले करके खूब मिल करके दोनों मिल करके वो जो फिर दिए कुछ देकर कुछ खाने पीने लगे, बैठ करके दोनों अपने से सट कर बैठ गए, सब बालक उनको सेवा करने लगे। अब बैठ गए भगवान, तभी दोनों ही कंकड़ पहने हुए थे, इयर रिंग पहने हुए थे, ये जो बाएं वाला इयर रिंग भगवान के जो कृष्ण के जो घुंघराली बाल था उसमें फंस गया, उनको पता नहीं फंस गया। अब जब उठ कर आने वाले थे वो लगा कृष्ण रोने लगे, क्या हो गया, उनके कान लटक रहा है, उनके बाल लटक रहा है, फंसा हुआ है, अरे अब कैसे करें, दोनों बालक हैं। तो उनको सुलझाने के लिए निकल देने के लिए प्रयास किए लेकिन कर नहीं पाए, कैसे करेंगे, ऐसे हैं ऐसे करेंगे, उनको तो देखा नहीं पड़ता, उनके पीछे बाल से फंसा हुआ है और उनके साइड है, एक तो देख नहीं पा रहे, एक आधा थोड़ा सा ऐसे अनुभव करता, खोलते खोलते और ज्यादा आप देखे ना कभी बाल में, हम यदि ज्यादा कुछ बदमाशी करेंगे वो ज्यादा ही फंस जाएगा, माताओं को ज्यादा अनुभव होगा, कैसे भी करेंगे, अगर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ तो गया, वो तो फंस गया, गांठ पड़ जाएगा फिर बड़े मुश्किल उसको सुना था। तो ऐसे फंस गया, अब फंस गया तो उसको थोड़ा छीन कर निकलना चाहते हैं, उसको कष्ट होता है और होता है। तो इसीलिए पूरे बलराम में ऐसे करते करते उनको ऐसे पकड़े, ऐसे करते करते घर को जाना पड़ेगा, वही नहीं कौन छुड़ाएगा, इसी मुद्रा में ऐसे करते करते गए। इतने गुस्से आ रहा था बलराम को, बोले बदमाश कुंडल मेरे अनुज को इतने कष्ट देता है, मुझे भी कान को पकड़ा है और उनको भी चोटी खींच रहा है, ऐसे गुस्से करके गए। तो माता रोहिणी जसदा दौड़ कर आए, आकर के तो काट कूट कर निकाल दिए उसको, उनको तो है निकाल दिए। निकाल देने के बाद बलराम क्रोधित हो गए, उससे हमेशा कंट्रोल कर रखते हैं, अब गुस्सा जो चांस मिला गुस्सा निकल कर कुंडल करो, गुस्सा तुरंत निकाल कर फेंक दिए, कभी नहीं पहनूंगा, ये बाएं कान भी बदमाश है इसीलिए कान में कभी कुंडल नहीं पहनते, केवल इसी कान में पहनते, उसी समय से वचन ले लिए अभी ये कुंडल पहनूंगा ही नहीं। अनुज के बाल को फंसा देता है तो इस कारण से एक कुंडल धारण करने वाले नीले वस्त्र पहनने वाले ये बलराम पूरे पाताल के नीचे रह करके रसातल के नीचे रह करके संपूर्ण लोकों को अपने बल से टिका के रखे हैं और जितने देवता हैं देवता ऋषि महर्षि सब उनको प्रार्थना करते स्तुति करते रहते हैं, सबसे स्तुत्य है। इस प्रकार भगवान अनंत देव की इन वर्णन में कोई भी काल्पनिक नहीं है, वे सभी दिव्य आनंद एवं ज्ञान से पूर्ण है, किंतु जब तक कोई उन्हें परंपरागत प्रामाणिक पुरुष से प्रत्यक्ष नहीं सुनता उन्हें नहीं समझ पाता। इस ज्ञान को ब्रह्मा जी नारद मुनि को दिया और महामुनि नारद अपने संगीत तमरु के सहित इस ज्ञान को विश्व भर में वितरित करते हैं। कभी कभी श्री भगवान को उत्तम श्लोक में वर्णित किया जाता है, तो उसको चैतन्य भागवत ने वर्णन किया गया कि ब्रह्मा कि वा शिव कि वे सनक आदि कुमार व्यास सुख नारद आदि भक्त नाम जार। बोले सब ब्रह्मा शिव सुख नारद सब भक्त लोग सवार पूजित श्री अनंत महाशय सहस्त्र वदन प्रभु भक्ति रसमय। भक्ति रस में हमेशा प्रबुद्ध रहते हैं, सबके द्वारा पूजित होते हैं, आदिदेव महायोगी ईश्वर वैष्णव महिमार अंत यहां ना जाना ये सब। वही आदिदेव है महाजोगी महाजोगेश्वर है वैष्णव है महिमार अंत यहां ना जाने सब, उनके महिमा का अंत कोई जान नहीं पाते हैं। सेवन सुनीला एवे सुन ठाकुराल। बोले अब तो सेवा का बात कहा, अभी उनके प्रभाव तो सुनो, उनके ठाकुराल ठाकुराई आत्मतंत्रे जे न मते वैसे न पाताल। ईश्वर के प्रति उनके सेवा भाव का मैं पहले वर्णन कर चुका हूं, अब आप सुने कि आत्मनिर्भर अनंत देव पाताल लोक में किस प्रकार अवस्थित है। श्री नारद गोसाई तंबुरु करी संगे जे जस गाये न ब्रह्मा स्थाने लोक बंधे। ब्रह्मा की सभा में नारद जी जाकर उसको गान करते हैं अनंत की महिमा। सृष्टि स्थिति प्रलय सत्वादि जत गुण जारा दृष्टि पाते हय जाय पुनः पुनः। सृष्टि स्थिति प्रलय उनके दृष्टि से काम चलता, देख देख करके होल क्रिएशन मेंटेनेंस एंड डिजोल्यूशन दृष्टि में करा देते हैं, पुनः पुनः बार बार करा देते हैं। अद्वितीय रूप सत्य अनादि महत्व तथापि अनंत हय के बुझे से तत्व। ये अनादि अनंत तत्व उसको कौन समझ पाता है। शुद्ध सत्व मूर्ति प्रभु धरे न करुणाय जे विग्रहे सवार प्रकाश सुलीलाय। शुद्ध सत्व मूर्ति यद्यपि कहा गया कि भगवान के तामसी अवतार है लेकिन फिर भी शुद्ध इसको समझा नहीं जा सकता। एक जगह पूछा गया वो कैसे हो सकता है प्रभुपाद उत्तर दे, बोले इसी के लिए तो भागवत में प्रभु कहा गया, प्रभु मतलब प्रभु है, वो कैसे करते हम नहीं जान पाएंगे। जे विग्रह सवार प्रकाश सुलीला है, जहां तरंग सिखे सिंह महाबली, जहां तरंग सिखी सिंह महाबली, निज जना मनो सच्चे हया कुतुहली, जे अनंत नामिर श्रवण संकीर्तने, ये ते मते करे नाही बोले ये ते जने, अशेष जन्मर बंध छिंड से क्षणे, अतएव वैष्णव ना छड़े क भूताने। बोले इस प्रकार अनंत का नाम उनके जो शरण लेकर उनके नाम गान करता है, अशेष जन्म के बंधन छूट जाएगा। शेष वही संसारे गति नाही आर, अनंतेर नाम सर्व जीवेर उद्धार। उसके अलावा गति नहीं, उसी से जीव का उद्धार हो सकता है। अनंत पृथ्वी गिरी समुद्र सहिते, ये सब प्रभु धरे न गिरे पालन करिते। अनंत समुद्र पर्वत धरा सबको धारण करते हैं। सहस्र फणार एक फणे बिंदु जेन, अनंत विक्रम न जाने न आछेन। पूरे समग्र धरती को ब्रह्मांड को धारण किए हैं, उनको पता नहीं चलता कुछ लोड है करके। अनंत विक्रम ना जाने ना, ना जाने ना आछे है ना, उनको पता भी नहीं चलता कुछ है भी लोड, पता नहीं चलता उनको। सहस्र बदने कृष्ण जस निरंतर, गायते आछान आदि देव महीधर। पर करते क्या है पता नहीं चलता। बोले हजारों मुख है, सहस्र बदने कृष्ण जस निरंतर, कृष्ण के जस महिमा को निरंतर वर्णन करते रहते हैं। गायते आछन आदि देव महीधर, उनका नाम महीधर है, धरणीधर है। गायन अनंत श्री जसिर नाही अंत, जय भंग नाही कार नाही बलवंत। यद्यपि अनंत काल से भगवान कृष्ण का जसोगान करते रहते हैं किंतु उसका कोई अंत नहीं मिला है। अद्यापि हसे सदैव सहस्र श्री मुखे, गायन चैतन्य जस अंत माही दिखे। आप कृष्ण का जस गा रहे थे, अब चैतन्य का जस गा रहे हैं, अब क्या करें, ये अंतर नहीं मिला, अभी हो गए दूसरे आ गए। बोले अभी भी चैतन्य देव के जसोगान कर रहे हैं और उनका भी कोई किनारा नहीं मिल रहा है। उसी प्रकार श्री अनंत देव है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं राजन, इस प्रकार मैंने श्री अनंत देव का गुण मैंने वर्णन किया। और जो इस गुण को स्मरण करता है, श्रवण करता है, वो भी भौतिक दोष से मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार वरदान दे करके सुखदेव गोस्वामी भी अनंत का वर्णन करते हैं। बोलते हैं कि मैं नहीं करता, मैं तो नारद जी जो बोले थे उसको बोलता हूं। नारद जी हमेशा वर्णन करते हैं बिना मजाक करके, और अपने ग्रुप के साथ अनंत के दोषो गान करते हैं, और अनंत भी गाने लगते हैं, वो भगवान की महिमा गाते हैं और बाकी लोग उनके महिमा गाते हैं। तो इस प्रकार ये जो अनंत देव है सबसे बलवान है, बल के प्रतीक है और सबको आनंद देने वाले हैं, इसीलिए बल राम, इसलिए नामकरण गंगाचार्य ने इस प्रकार किए थे। इसी बलराम ने अपने लीला में यद्यपि कृष्ण के साथ कृष्ण के सेवक भगवान बनकर के, कभी अनुज कभी अग्रज बनकर के उनको कई प्रकार के सेवा करते हैं, यद्यपि वही एक ही है रंग मात्र भिन्न, लेकिन फिर भी आपने लीला पोषण करने के लिए कभी अलग अलग प्रकार के भाव लेते हैं उसको वही समझे। किस लिए काल जैसे हम चर्चा कर रहे थे, भगवान बलराम जब ब्रज में जब थे तो थे, जब उन्होंने मथुरा में गए, मथुरा में एक साथ पढ़ लिख करके आए, आने के बाद थोड़े दिन में इनका कौन हो गए, जरासंध कौन हो गए, मामी के पिताजी कौन है, नाना जी आकर जब आक्रमण किए, तो सारे मथुरा वाले बोले तो अभी रेडी नहीं है, हटात आक्रमण हुआ तो बोले कोई बात नहीं, हम दोनों जाते हैं। कृष्ण बलराम दोनों गए, जा करके अपने अस्त्र शस्त्र स्मरण करके लड़ाई की। लड़ाई में जितने लाए थे उन्होंने महाभारत युद्ध से ज्यादा लोग सैन्य लाए थे। महाभारत युद्ध में तो दोनों पक्ष मिलकर के 18 अक्षौणी था, लेकिन वो अकेला 23 अक्षौणी लाता था और उसको सारे मार दिए वन डे में, चल आउट वन डे मार करके। बलराम ने जरासंध को पकड़े, गला पकड़ कर मरो रहे थे, बोले वही मोड़ मार के रख दूंगा। भगवान जाकर पकड़े उसको, कृष्ण बोले भैया छोड़ दो, क्यों छोड़ दो, छोड़ दिए प्लीज छोड़ दिए। जरासंध सुन रहा था, देख रहा था, वो तो गांव कर रहा था, मर रहा था, वो जाकर छुड़वा दिए उसको। उसको इतनी शर्म लग रहा था, बच्चे मुझे छोड़ देते हैं यार दया करके लेकिन क्या करें। तो वहां पर देखने मतभिन्न है, वो मारना चाहते हैं, बोलते नहीं छोड़ दो। यद्यपि वहां कारण था, भगवान ने बाद में बताया, बोले इसीलिए छोड़ देने बोलते हैं, फिर पकड़ के लाएंगे, कहां जाएंगे, होलसेल यहीं बैठे बैठे काम करेंगे, अरे ढूंढने कहां जाएंगे, हम तो असुर विनाश करने के लिए आए हैं, अब यहीं पे सब लेकर आएगा, हम यहीं पर खड़े बैठे बैठे सब काम करेंगे, अब कहां जाएंगे ढूंढते, वो सब ढूंढने के लाएगा, तो इसलिए छोड़ दो। तो इसलिए छोड़ते थे, तो बार बार किया तो वहां से भाग निकले, दोनों एक साथ में भाग निकले, रणछोड़ भी दोनों ही बने रणछोड़, ऐसा बात नहीं। भगवान दौड़े, बोले दादा चलो चले, हमेशा उनके साथ में, ये सर हमेशा करते हैं। 17 बार उनको गले पकड़कर मारने के लिए चले थे, आज भाग कर दौड़ चले गए। तो जरासंध मुर्ख को सोच रहा है कि मेरे से हार कर भाग गए, अरे हार गए तो कब का मार दिए होते, हार गए इसलिए हार गए, बोलते कि ये भी हार गए। उनके पीछे दौड़ के चले गए, पहाड़ में चले गए, वहां से कूद करके द्वारका चले जाते हैं। सब पूछे, सभी आ गए, वो दोनों कहां गए, भगवान के नाम रणछोड़ करके बलराम जी ने रखे, अपने अनुज के नामकरण की, वो दौड़ कर आया, मैं थोड़ी दौड़ा था, मैं नहीं दौड़ने वाला था, तुम उसे खबर ले लेता, लेकिन दौड़ा मैं पीछे दौड़ कर आया, यही रणछोड़ के आया, इसलिए उनका नाम रणछोड़ बलराम जी ने रखे कृष्ण के नाम। तो वहां वे द्वारका में रहे, अब द्वारका में रहे थोड़े दिन में महाभारत युद्ध की तैयारी होने लगा। महाभारत युद्ध में अब बलराम देखे कि ये दोनों आएंगे बुलाने के लिए, और दुर्योधन तो उनके चला था। एक बार जब पहले बार उन्होंने द्वारका में थे कृष्ण और बलराम, और भगवान की जब तीसरी शादी हुआ सत्यभामा के साथ, तो शादी करने के बाद खबर मिला दिल्ली से हस्तिनापुर में कि वो उनको भेज दिए थे पंच पांडव को हिल स्टेशन में रहने के लिए लक्ष्या भवन में, और यहाँ अग्निकांड हो गया, सब जल मर गए। सब मैसेज पहुंचा, और मैसेज बोले उनके भी संबंधी होंगे ना, कृष्ण बलराम का उनके माँ के बुआ के बेटे हैं, तो उनको जाना पड़ा शुद्धि क्रिया में भाग लेने के लिए। तो कृष्ण बलराम आए, आकर दिल्ली में थे, शुद्धि क्रिया कर रहे थे हस्तिनापुर में, उसी समय के चांस लेकर के बदमाश क्या नाम था शत्रुघ्न, वो मर्डर कर दिया भगवान के ससुर साहब प्रसन्न ने मर्डर कर दिया। तो सत्यभामा ने तुरंत, देखो अभी भी शादी हुआ तो हमने राजकुमारी तुरंत गाड़ी चला करके और द्वारका से दिल्ली आ गई, आकर उनको बुलाया, तो दोनों रोध होकर के चल पड़े, ससुर जी का मर्डर हो गया। अब जा करके घर ना जा करके बोले तुम घर जाओ, हम जाते हैं पकड़ने के लिए। दौड़े प्रसन्न को पकड़े, उनके रथ गाड़ी पंक्चर हो गया, गाड़ी टूट गया, दौड़ा तो फिर दौड़े दोनों। तो बलराम जी ने देखे बेचारा बड़ा थक गया, बोले देखो उसको पहले चेक करो, अगर मणि है तो फिर दंड देना, नहीं तो छोड़ देना उसको, बहुत परेशानी बेचारा डर गया। तो बलराम भाई खड़े थे, बोले जाओ कृष्ण दौड़ कर गए, जैसे पकड़े पकड़ कर सीधा मार डाले उसको। मारने के बाद फिर सर्च किए डेड बॉडी, समाणी तो था ही नहीं। तो आकर के बोले भगवान, बोले मणि कहां? बलराम पूछे कृष्ण मणि? मणि तो था नहीं, मार दिया ना, मार दिया, पहले मार दिया, पहले मार। हमेशा ऐसा करता है, मैं बोला ऐसा करना नहीं है। भगवान थोड़े अपने आप को शांत, इसलिए उनको ज्यादा लोग मानते हैं, शांत शिष्ट है, तो इसलिए बोले मैं तेरे साथ नहीं। तो हमेशा उत्पटन काम करता है। भगवान चले गए टूर, कहीं घूमने चले गए, जाके मिथिला कहीं चले गए, तो उसके चांस लेकर के दुर्योधन ने जाकर उनको गुरु बना लिया, उनसे गदा युद्ध सीखा। फिर आ गए घूम फिर करके। और आने के बाद जब युद्ध शुरू होने लगा, उसके बीच में और एक घटना हुआ था, अभी लड़ाई नहीं हुआ था, महाभारत युद्ध नहीं हुआ था, कि कृष्ण के एक बेटा सांब ने हो गया था, दुर्योधन का एक बेटी था लक्ष्मण, उनके स्वयंवर चल रहा था, पता नहीं किसी पहचान होगा नहीं होगा, सांबज कुमार चले गए और लक्ष्मण ने उनको पसंद किया, उन्होंने उनको पसंद की और उसको हरण करके ले गए। बोले अरे अरे स्वयंवर हुआ नहीं, उसको किडनैप कर लिया उन्होंने। अरे हम है क्षत्रिय, ये वाले है जदू है, ये कैसे ले लेंगे? वो खूब गाली देने के बोले, पैर आकर के ऊपर उठेगा, थोड़ा सा उनको छूट दे दिए, खूब गाली गुलास दिए, सांबो को पकड़ कर अरेस्ट कर लिए, अरेस्ट किए, खूब लड़ाई सामान के, लेकिन सब मिलकर अरेस्ट करके रख लिए। नारद जी ने खबर आके दी, इसी से हाल हुआ। तो कृष्ण ने बोले कि चलो अटैक करके लेकर आएंगे बेटे को। थोड़ा बलराम जी बोले नहीं नहीं छोड़ो, क्यों झड़ा झटी कर, शांत प्रिय है, गुस्से के प्रतिवर्ती है, लेकिन बोलते हम शांत के समझता। अब भगवान ने मान लिए, बोले भैया वो बोलते हैं शांत करेंगे, तो बोले ठीक है मैं जा रहा हूं, अब सब रहो, मैं अकेला जा रहा हूं। अकेले गए, दो चार सेवक साथ में लेकर के, जा करके जमुना जी के किनारे बैठ कर बोले मैं जाऊं कैसे शांत करने, मैं तो गुरु जी हूं, गुरु जी स्वयं जाकर बात करना ठीक नहीं, शिष्य को आना चाहिए गुरु जी को स्वागत करने के लिए। फोन तो तब जमाने था नहीं, तब जाकर के चिट्ठी लिखे, चिट्ठी भेजे इसके हाथ में, सेवक के हाथ में, जाकर दुर्योधन को दे देना, वो मेरा चला है, और उसको दे देना, बोलो मैं आया हूं करके बैठा। लेकिन दुर्योधन इतने गर्व में उन्मत्त होकर बैठा था, भगवान के पत्र पाकर भी उनको होश नहीं आया, और उन्हें और बड़बड़ कर बोलने लगा, आ करके बैठ गया, ऐसे ऐसे करते हैं, और ऐसे अपमान सूचक बात कहने लगा। और सेवक आकर बोला प्रभु जी ऐसे ऐसे बात है। बोले क्या? अब उन्होंने बोल रहे थे वो बदमाश है उनको युद्ध करके, लेकिन उन्होंने मना किया, तो बोले देखो मैं उनको समझाया, बोला कि वो मेरे शिष्य है, अच्छा है, लेकिन ये बदमाश निकला। तो गुस्से में आ गए, आ करके बोले ठीक है, आपने हल निकाले, बोले सीधा हस्तिनापुर को उठाकर जमुना फेंक दूंगा। सीधा हल लेकर के हस्तिनापुर को उखाड़ रहे थे, जब उखाड़ने चले तो यार को क्यों होने लगा, क्या हुआ क्या हुआ, कोई पता लगा? अरे बलराम जी आए थे जमुना किनारे तो उखाड़ने वाले, अरे दौड़ो दौड़ो भागो चलो, सब आरती प्लेट पूजा थाली सब लेकर के भेंट सामग्री, दूर दूर जाकर कान नाक पकड़ कर प्रणाम किए, भूल हो गया माफ कर दो माफ कर दो, फिर छोड़ दिए। इतने बदमाशी देखे उनको, अपने चले होकर कितने उत्पटांग काम किया देखे। बाद में जब फिर लड़ाई महाभारत शुरू हुआ, दोनों कृष्ण बोले देखो दोनों आ रहे हैं, मैं तो नहीं मारे ना, बुलाएंगे क्या करें, मैं जा रहा हूं तीर्थ में, पिलग्रिमेज टूर में चले गए, तीर्थ करने के लिए निकल गए। अब निकल करके भगवान बोल रहे थे लड़ाई में, मैं लड़ाई नहीं करूंगा, लड़ाई नहीं करूंगा करके चले गए, जाकर लड़ाई करेंगे, तीर्थ यात्री बन करके गए, अभी हिंसा नहीं करना चाहिए तीर्थ व्रत में, लड़ाई जाकर पहुंच गए घूम फिर करके नमिषारण्य में। नमिषारण्य में पहुंचे तो वहां तो कथा चल रहा था, 88,000 ऋषि मुनि बैठे हुए थे और रोमहर्षण सूत्र कथा वाच रहे थे, यज्ञ चल रहा था। जैसे पहुंचे राम को से बड़े बड़े ऋषि सुनकर आदि पहचान लिए, पहचान कर उठ कर यथाविधि उनको सम्मान प्रणाम आदि किए, लेकिन जो व्यासासन में बैठा था रोमहर्षण सूत्र ने उठाने, अरे वही बैठे बैठे प्रणाम कर लेता, हाथ जोड़ देता, खड़ा नहीं हो कुछ भी जो हो करता, कुछ नहीं किया कुछ नहीं किया। भगवान ने आए बैठे बैठ कर देखे, बोली ये नहीं उठा सम्मान नहीं किया। तो भगवान को लगा रहे ये क्या, ये हमसे बड़ा हो गया क्या, मैंने कहा ये सारे ब्राह्मण ऋषि मुनि सब मेरे सम्मान किए, ये मुझे सम्मान नहीं किया, ये तो गलत है। बोले ये तो सूत है, सूत मतलब ब्राह्मण भी नहीं है, प्रतिलोम जाता, इस प्रकार से जन्म हुआ उसका। और फिर थोड़ा व्यास जी से लाके लिख पढ़ के आ गया, पढ़ लिख कर आ गया, करे अपने आप कितने बड़ा मानता है। भागवत में इसी लिखा गया है कि उन्हें व्यास जी के शिष्य जरूर था, जितने प्रतिलोम जात था, सूत था, मतलब जाति ब्राह्मण उच्च कोटि के, उच्च जाति का नहीं था, लेकिन फिर भी व्यास जी ने कृपा करके अपने स्टूडेंट में ले लिए थे उनको। खूब पढ़ लिख याद करके कुछ सीख लिया था, कुछ सीख करके अपने घर में आकर बैठ कर कथा कर रहा था। और ये पता नहीं था कि बड़ों को कैसे सम्मान करना होता है, स्थान काल पात्र के हिसाब से बड़ों कैसे सम्मान करना होता है पता नहीं था। रूपा जी ने लिखते हैं तात्पर्य कि कोई किससे केवल भौतिक ज्ञान से किसी प्रकार से बढ़े चढ़े हो जाए, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान अगर नहीं है तो इस प्रकार मार खाएगा, मारा गया। भगवान में गुस्से हो गए, उठा कर घास के ले लिए, घास लेकर के फेंक दिए, घास से मार दिए उसको। घास से कैसे मार दिए, ये तो भगवान है तो कुछ भी कर सकते हैं, वहीं पर मर्डर कर दिए। व्यासाचल बैठा था, क्लास दे रहा था, मार दिए उसको। और जितने सुनने वाले स्टूडेंट थे बोले सारे ये क्या कर दिया, हर क्लास अभी खत्म ही नहीं हुआ उसको मार दिया। अरे खत्म हो लेता कम से कम प्रसाद के टाइम में, अभी अभी मार दिया उसको सर, ऐसे कैसे, हम तो इतने दिन तक कथा चलेगा। तो बलराम जी बोले कब न, बोले हम लोग ब्राह्मण था नहीं, लेकिन हम लोग ने उसको सब ब्राह्मण बना करके बैठा थे, कथा कह रहा था, वैसे कर रहा था। फिर तब सभी लोग जब प्रार्थना करने लगे तो बलराम बोले तब क्या कहना चाहते हैं ना, हम क्या कहेंगे, कोई वेद, कोई श्रुति, कोई पुराण भी कोई आपके ऊपर तो कोई बोल नहीं सकता, आपको कोई आदेश दे नहीं सकता, कोई नियम नहीं आपको, आप सब नियम से परे हैं, लेकिन फिर भी हम प्रार्थना करते हैं थोड़ा कुछ कुछ कर दीजिए ताकि हमारा काम भी चले। और लोग आगे से लोग जो बोलेंगे कि हम ही मार देंगे इसे, नहीं, लोग शिक्षा के लिए कुछ ऐसे काम करें तो बोलो क्या करूं ना, हम कथा क्लास तो पूरा हो जाने दे, कुछ बैठा दीजिए वक्ता। तो भगवान ने बोले चलो, उनका बेटा उनका जब पिता के जैसा होता तो उनको बैठा देंगे। तो बेटा को उठा करके उनको एम्पावर्ड कर दिए, शक्ति दे करके उनको बैठा दिए, उग्र सर्वास उसको बैठा दिया, कथा कहा। बोले और क्या करो ना, और ऐसा है सिद्ध, ऐसे आपको करना तो नहीं चाहिए, आप तो परम शुद्ध है, लेकिन फिर भी लोक शिक्षा के लिए कुछ करना चाहिए ना। बोले आपके लिए क्या करूं, आप खुश हो जाओ ना। ऋषियों ने सब देखे, चांस लिए, बोले अभी आए हैं यही काम कर लेना चाहिए। नवीसारण्य में भी एक असुर था, हमेशा फिक्स डेट में आकर तकलीफ देता था, उनका डेट फिक्स था, परवणी परवणी शुक्ल प्रतिपदा में हर महीना में आकर प्रतिपदा के दिन इतने बदमाशी करता था, सारे क्या क्या वस्तु जाकर फेंकता था, रक्त पी विष्टा सब फेंकता था यज्ञ कुंड में, और बड़े उत्पटांग काम करता था, सारे ब्राह्मण को मारपीट करता था, भाग जाते थे, बहुत तकलीफ करता था उसको। तो सारे ब्राह्मण ने ऋषि मुनि बोले कि ऐसे ऐसे बलबल असुर है, इलबल का पुत्र बलबल महाबली है, ऐसे ऐसे करता है, आप अगर उनको थोड़ा टेक केयर करते तो हम आप बहुत खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। तो भगवान ने बोले कोई बात नहीं, तो रुक गए नवीसारण्य में प्रतिपदा तक। जैसे प्रतिपदा आया, साइक्लोन की तरह अंधड़ आया, बिल्कुल धूल उड़ने लगा, और बिल्कुल धूल के अंदर छिपे हुए बलबल असुर विशाल त्रिशूल लेकर के आया, पूरे सारे स्थान दुर्गंध पीपस से भर दिया ला करके, और उठा और सब ब्राह्मण लोग डर गए, बोल रहा हम पाही मांग पाही मांग। तो बलराम जी ने देखे उसके बीच में विशाल असुर, बीच में आकाश छू रहा है, त्रिशूल लेकर खड़ा है। जैसे बलराम को देखा असुर ने बोले बहादुर बाप, ये तो कोई और है, ये तो ब्राह्मण नहीं है और कोई, वो भाग जा रहा था, तुरंत आकाश उड़ जाना चाहता, जोग शक्ति था, उठ कर सब उठ कर कहां जाएगा, भगवान ने अपने हल को स्मरण किए, अब हल इसलिए हल ले नोक में खींच ली, उसको खींच कर नीचे ले जा, नीचे एक हाथ में खींचे एक हाथ में मुसल था, हल मुसल से धारण करते, एक हाथ में खींचेंगे एक हाथ में पीटेंगे, इसलिए एक हाथ में बलबल कैसे मारे, हल पकड़ तो जाएगा था, उड़ तो भाग जा रहा था, ऐसे पकड़ लिया, जितने स्पीड में जा रहा था वो हल ऐसा है कि जैसे पांच मिनट नहीं रहेगा, उनके इच्छा के अनुरूप वो भी बढ़ते जाएगा। वो बलबल असुर महाजोग शक्ति से उड़ते आकाश की ओर भाग चला जा रहा था, जितने स्पीड में जा रहा था उतने ज्यादा हाई स्पीड में हल बढ़ने लगा, बढ़ करके उसको आगे जाकर तो उसको कंधे पर पकड़ गया, आओ खींच लिए उसको, खींचे खींचे आया सामने पर ले आया, खींच कर खींचे सामने आ गया, डाहिने हाथ में मुसल पकड़ते घुमा कर पीठ में, दबा दी, बिल्कुल सेट हो गए। इसे पकड़ करके सबके सामने मरवा दिया उसको। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं उसको पीट दिए एक ही प्रहार में, दूसरा स्ट्रोक नहीं लगे, वन स्ट्रोक ही सेना पूरे सारे तबाह हो गया। एक बोलते हैं रक्त का फवारा निकला, देखा ना कभी वो पानी के होता है ना सब स्प्रे बड़े बड़े गार्डन में, तो इसे पानी रक्त इसे निकला। बोलते हैं कि वो इसे गिर पड़ा इधर, बोलते हैं जैसे कोई विशाल पर्वत, लाल पर्वत गेरू रंग, क्योंकि रक्त इतने श्राव हो रहा था पूरा लाल पर्वत जैसे पड़ा हुआ, ऐसे उसको मार डाला। ये ही बलराम के परिचय, ऐसे उसको बद्ध किए। तो सारे ऋषि ब्राह्मण खुश हो गए। तो फिर उन्होंने बोले कि अब तीर्थ करने के लिए गए, बहुत यज्ञ दान सब किए, पूरे भारत वर्ष को एक साल टूर किए और तीर्थ, प्रत्येक तीर्थ में जा जाकर स्नान करके दान देखना, उनका कमी थोड़ी है देना है, सब खूब दान, पूरा तीर्थ घूम घूम करके आए। इसलिए हम उनके अनुजाई है ना, इसलिए तीर्थ टूर में जाते हैं सब। बोले आप क्यों तीर्थ जाते हैं? हमारे साल गए थे, बलराम जी ने गए थे, तो इसलिए उनके पदचिन्ह में जाना चाहिए। सारे तीर्थ में गए थे, जा जा करके सब शुद्ध किए, शुद्ध करके तीर्थ करके सब खुश करके आ गए। आकर प्रभास में पहुंचे, प्रभास तीर्थ था, प्रभास में पहुंचे सब ब्राह्मण लोग बोले पता लगाए कैसे क्या है। बोले सर क्या बताएं, आपके पारिवारिक लड़ाई झगड़ा जिसके लिए चले गए थे, युद्ध सब मरमिट गए, फाइनल मैच चल रहा है अभी। कौन कौन है फाइनल मैच में? स्टेज पर दो ही खड़े हैं, दुर्योधन और भीम। सुन करके दौड़े, बोले मैं जाऊं देखूंगी मेरे चेला है कैसे हैं। और जाकर पहुंचे कुरुक्षेत्र में, पहुंच करके देखे वो दोनों गुस्से में चूर होकर के एक दूसरे को गदा युद्ध में पड़े हैं। ये उनके तरफ से एक ही बचा था दुर्योधन, बैक से गए थे, और भीम के साथ लड़ाई हो रहा था, फाइनल मैच था ये, वही मैच ओवर हुआ तो युद्ध विजय होगा। 18th डे था, 18th डे में पहुंच गए सर, टूर खत्म करके। मुझे लगता है कि 10-15 दिन में पूरा वर्ल्ड टूर इंडिया टूर करके आ गए होंगे भगवान। 18 डे में आके पहुंच गए, और जब मैच उनका चल रहा था जाकर पहुंचे, पहुंचे तो बाकी जो चार भाई थे और कृष्ण भी खड़े थे, सब आके प्रणाम किए, इनकी भ्राता से कैसे आ गए। प्रणाम करके कुछ बोले, चुपचाप खड़े थे। प्रभुपाद बोलते क्यों चुपचाप खड़े थे? सब मन में ही क्यों आ गए, तो टूर में गए थे, तीर्थ यात्रा में गए थे, ये अभी क्यों आ गए? क्यों कुछ बोल नहीं रहना? क्योंकि जानते ही उनके तरफ का है, वो दुर्योधन के गुरु जी हैं, अब उनके लिए तो कुछ नहीं बोलेंगे, उनके सपोर्ट तो नहीं करेंगे, इसलिए डर के मारे खड़े थे। पता नहीं अभी क्या होगा, ये तो पहुंच गए, अभी कुछ भी गड़बड़ कर सकते हैं। वो सचमुच गड़बड़ी हो, वहां खड़े थे, अब दोनों कोई किससे कमी नहीं थे, वो भी बलराम जी के चेले ठहरा था दुर्योधन, गदा युद्ध में कुशल खूब था, उन्होंने एक्सपर्टीज था, लेकिन भीम बल में बहुत ज्यादा था। वो पैंतरा लगा करके बड़े छक्का पंजा में मारता था उनके अलग अलग जगह में, भीम को कंधे में इधर उधर, लेकिन भीम इतने बलशाली थे, उनके मसल्स इतने पावरफुल था, इतने जोर से भीम मार दुर्योधन मार रहा था। महाभारत में वर्णन है, वो इतने जोर से पीट रहा था उनके मस्तक में भी कि अग्निपुंज निकल पड़ता था, आग निकलता, आग के चिंगारियां निकलता था, विशाल गर्जना होता था, पूरी भूमिकंप हो जाता था, लेकिन उसका कुछ नहीं हो रहा था, जख्म भी नहीं होता, इतने स्ट्रांग था, कुछ नहीं होता था। दुर्योधन तंग हो जाता था, पूरा दो हाथी इतने जोर से मारता था, आग निकल पड़े, इतने महा आवाज होती, उसे कुछ नहीं होता था, बाल नहीं गिरता था उसका। कई बार कंधे में इधर सिर पर मारा, तो इसी को बलराम जी ने देखते थे मैच, बोले ये तो महाबली, उसको कुछ होता ही नहीं, इतने जोर से मार पड़े उसका कुछ जख्म ही नहीं हो। और ये भीम तो उठाकर धूम पीटता है, उसको चाल पता नहीं, वो तो बलशाली है चाल में, दुर्योधन खूब चाल वाल है कि, लेकिन चाल क्या काम कर रहे हैं, उसको मसल से इतने टाइट है कुछ काम ना करे। हाँ वो लड़ाई चलता रहा, कोई कुछ नहीं। बलराम जी ने बोले देखो मैं देख लिया मैच, तुम बिल्कुल पक्के हो, चार सब तो जब कुशल पता है, लेकिन भीम का पहाड़ जैसा लोहे जैसा है, उसे कुछ काम नहीं करेगा तो बेकार, कोई किसी को जीत नहीं सकते, बंद करो लड़ाई, बंद करो, स्टॉप करो लड़ाई। लेकिन बलराम जी कहने पर कोई माने नहीं थे, इतने गुस्से में थे कि हिंसा जंतु की तरह आप दूसरे में इतने जुड़े हुए थे हिंसा में, माने नहीं, माने नहीं तो बलराम जी बोले छोड़ो क्या उनको बताएं, इसी समय थे, मोड़ दिए थे मन। लेकिन इतने में भगवान ने चांस लेकर के सिखा दी। बोली भीम को बोले तो टाइम क्यों खराब कर रहा है, यार थप्पड़ मारो यार नीचे। और गदा युद्ध का नियम है अध अंग से ऊपर प्रहार करना चाहिए, नीचे नहीं करना चाहिए, कमर से ऊपर होना चाहिए प्रहार। और जैसे भीमसेन ने लक्ष्य कर लिया, भगवान ने इशारा कर रहे हैं कि बेकार टाइम वेस्ट मत करो, यहां चलाओ, और उठाकर लगा दिया जंगल। एक स्ट्रोक में दुर्योधन गिर पड़ा, टूट गया उसका तो जंग है, नरम था बाकी सारे गर्म था, टूट गया। आप भगवान में वापस आ रहे थे, बोले मेरे बात नहीं मानते छोड़ो, लेकिन देखा जैसे उनके प्रहार करके मार दिया तो गुस्से में चूर हो गया। ऐसा किसी करते गुस्से में आकर मार दूंगा, ये करूंगा, बाप रे बाप, भीमसेन बोला उनके सामने कौन करे, साक्षात अनंत से फुतकार में उड़ा देंगे किसको, तो उनके सामने क्रोध में आ जाते, कोई उनका सामना नहीं कर सकता। लेकिन भरोसा था कृष्ण, कृष्ण जाकर पकड़ लिया उनको, किस ऐसे करना, ओ कृष्ण सर विवरणी बता दी, ऐसे ऐसे आपके चला, यही सब काम किया। बोले कुछ ठीक है, जाने दो उनको जो कर रहे हैं, फिर चले जाते। तो उनके क्रोध को नियंत्रण करने के लिए केवल कृष्ण रहते, वो गुस्से में आएंगे, वो दोनों भाई का ये रस है, विशेष रस है, इतने गुस्से में आ जाएंगे, ये अन्याय हुआ, ये हुआ, और अन्याय को न्याय में वकील आकर बढ़ाकर दिखा देंगे, और फिर समझ जाएंगे। बोले ठीक है, ठीक यही इसी प्रकार दूसरा हुआ था जब उन्होंने द्वारका में थे, अर्जुन ने विशेष कारण था, उन्होंने वनवास किया था, उनको उनको 12 साल के लिए उन्होंने दंडित हुआ था, निर्वासन दंड लिया था, और घूमते घूमते निर्वासन जाकर के पहुंचा प्रभास क्षेत्र में, वहां द्वारका में आता है, तो वहां देखा कि चतुर्मास चल रहा है, और वहां था सब पता चला, ऐसे तो पता चला कि सुभद्रा जी के शादी के लिए बातचीत चल रहा है। सुभद्रा को अर्जुन ने पहले देखा था, ओ सुभद्रा की बात सुनते बोला अरे शादी तो वही करना चाहिए था, लेकिन कैसे करें, अभी चतुर्मास चल रहा है कैसे, तो सन्यासी बन गया, सन्यासी बन करके ओ जाके बैठा। अब वो लोग सब द्वारका वासी देखे, बिल्कुल यंग नया सन्यासी आए, बड़ा महाजोगी, वो जाकर के बोले भगवान ने बताया भाभी को, बोले भाभी रोहिणी जी की आप चतुर्मास चल रहा है और भैया ने सुभद्रा का शादी के ये कर रहे हैं, कोई धर्म कर्म तो करना चाहिए ना, हाँ नहीं इतने बड़े जो भी सन्यासी आए उनको घर में बुलाना चाहिए प्रसाद के लिए। रोहिणी भाभी जा करके बोले बलराम को आप कुछ करो उनकी शादी से पहले कुछ सब मंगल हो जाए। हाँ कहाँ है, गए बुलाने के लिए, बलराम ने पहचान नहीं पाए, इतने मेकअप करके अर्जुन बैठे थे, उनको बुला के लाए, स्वयं बुला के लाए, स्वयं बुला के लाए और बुला के लाए घर में बैठाए, अच्छा चर्चा के बोले देखो मेरे बहन का शादी अभी डिसाइड किया गया है, मेरे शिष्य है, मैं जानता हूँ राजा है, राजा है हस्तिनापुर के, दिल्ली के राजा है, और उनकी शादी कराएंगे तो आप थोड़ा आशीर्वाद देना, भोजन आज करना वो करना। और वो सन्यासी तो मौनी सन्यासी बनकर गए थे, डर है तो सन्यासी बोले अगर बात कहूं सब पकड़ में आ जाए, इसलिए मौन व्रत धारण कर लिया उस दिन, जो इससे देखे कि बड़े भैया आए हैं इन्विटेशन करने के लिए, तुरंत मुंह बंद करके बैठे। बलराम जी सोचे शायद सन्यासी मौन व्रत धारण किए, चलो कोई बात नहीं, मौना है खा तो लगे, आशीर्वाद तो दे देंगे, उस मौन से क्या मतलब। तो स्पेशली उनको आशीर्वाद देने के लिए, क्योंकि भद्रा के शादी के लिए सुभद्रा को बुलाए, बोले देखो रोहिणी की, बोले सुभद्रा को बोलो उन्होंने परिवेशन करे आकर के, क्योंकि सन्यासी की सेवा करने से उनका मंगल होगा, कुशल होगा, ठीक से शादी हो जाएगी। उन्हीं को बुलाए, स्वयं बुला कर खबर भेजो, आके परिवहना दोनों को, दोनों वही मिलन हो गया। अब जहां कहा उन्होंने अरेंज किए, और वहीं पे खाने पीने परिवेशन करने में सेटिंग हो गया, सेटिंग हो गया। अब जब चतुर्मास पूरा होगा, जब वैकुंठ एकादशी होता है, उसमें उनका निकलते हैं सारे कुमारी कन्या जाते हैं पूजा करने के लिए, वो पर्वत में गिरनार में वो देवी प्रथम पूजा करने के लिए जाते हैं। तो पहले सेटिंग हो, ले जाकर यहां बैठो, हम जब जाएंगे रथ में केवल स्त्रियां जाते हैं, अब हम किडनैप कर लेंगे, प्लानिंग हो गया। और जा रहे थे उनको हरण किए, अरे उन्होंने उनको बुलाकर घर में खिलाए पिलाए, उनको बुला स्वर्गीषण कराए। आप जैसे सुभद्रा को अर्जुन उठा के ले गए, गुस्सा बलराम का इतने हुआ, बोले कैसे ऐसे हो सकता, मैं होते होते सुभद्रा के संकट ले सकता, अरे दुर्जन से शादी कैसे डिसाइड कर लिया, हा? लेकिन आप डिसाइड कर लिए, कोई बोले कि नहीं ऐसा, किसी को नहीं सुनूंगा, मैं सुनूंगा नहीं, मैं डिसाइड किया, डिसाइड किया। आप फिर भगवान ने बोले तू किडनैप करके ले जा, देखा जाएगा। अर्जुन बोले आपके भाई, बाकी तो किसी को मैं डरता नहीं, आपके भाई साहब बड़े उनके सामना किसी को नहीं कर सकता ना, मैं हूं ना, संभाल लूंगा, चिंता मत। आप जब गाड़ी में से किडनैप करके ले गया, अब सारे सैनिक दौड़ पड़े लड़ाई करने के लिए, हो अपहरण अपहरण हो गया, खबर आके पहुंचा, बलराम जी गुस्से में चूर होकर दौड़े, पहले भले कृतवर्मा सेनापति था, दौड़ कर गया, जाकर के बाण चलाए, वो समझा कि ऐसा बाण कौन चलाता है। कृतवर्मा अर्जुन के शिष्य था, अर्जुन से बाण शिक्षा किया था, वो हमने देखा, अरे गुरु जी है तो उनके साथ क्या बात है, सामने गुरु जी किडनैप करके ले जा रहे राजकुमारी। तो उन्होंने बोला गंडाउन कर दिया, बोला गुरु जी के साथ में लड़ूंगा नहीं। और बाकी सारे सैनिक बोले सेनापति सारे लड़ते नहीं, हम कौन लड़े, वापस आए, आकर बोले अर्जुन ने देखा कि ये कृतवर्मा मेरे से लड़ता नहीं। तो सुभद्रा जी ने देखे कि अभी अभी पति देव ने रथ भी चलाते हैं और लड़ते भी, बोले कोई बात नहीं, मुझे भी हेवी लाइसेंस है। मतलब पता चलता है तभी जवान स्त्री हुई गाड़ी चलाते थे, सुभद्रा चला देती। बोले नो प्रॉब्लम, आप लड़ाई करो, रथ में आ जाओ, मैं जाता हूं स्टीयरिंग पकड़ता। वो गाड़ी चलाने लगी, वो जब गाड़ी चलाने लगी, आप भगवान ने चांस लिए, भगवान ने सारे ट्रेनिंग दिए होंगे, तुम चलाना गाड़ी। आप भगवान ने बलराम जी तो गुस्से में जा रहे थे, जब पता चला अर्जुन करके तुम्हारे बताते, अर्जुन ऐसे बदमाशी सन्यासी बन, झूठे से धोखेबाज सन्यासी बन करके आकर के नाम कर लिया, मैंने उसको पता नहीं ऐसे निभाट किया, वो ही सन्यासी बना था, अरे मैं न जाने उसी सुभद्रा को उनके सामने सेवा के लिए दिया, अरे सब गड़बड़ करके गुस्से में तो दौड़े, आज मार दूंगा, आज नाश कर दूंगा। आप कृष्ण साथ में दौड़े, बोले आप अर्जुन के, अरे तू ही बदमाश है, तेरे दो मित्र है, बोले मेरे मित्र है इसलिए तो मैं बोलता हूं, आप क्यों मारने जाते हैं, मेरे मित्र वही मार देता हूं, आप क्यों कष्ट करेंगे, तू मार देगा, तू तो होता हमेशा साथ में रहता है ना, मैं बोलता हूं तो सुनो तो सही, मैं मारू हो मार कोई बात नहीं, मार तो मैं भी सकता हूं, आप बोलते हैं आपके आदेश में पालन करो, नहीं देखो तो सही, मार देने से कौन वो सती तो हो जाएगी, मदरा सती हो जाए क्यों, ना देखो ना गाड़ी कौन चला रहा है, कौन चला रहा है, सुभद्रा चला रहे। अच्छा मतलब वो राजी है क्या, राजी ने गाड़ी चला रहे, वही चला के जा रहा है, पर पकड़ लिए, वो पर पकड़ लिए, देख लिया सुभद्रा, चलो यार छोड़ो, बुला फिर बुला, ढंग से शादी करे, क्यों फिर चोरी चोरी बुला कर। महारोषी इतने क्रोध अमर से कंट्रोल करके रखे हैं, जब निकलता है क्रोध कोई सामना नहीं कर सके, भगवान भी आकर चरण पकड़ेंगे, तब शांत हो जाए तो पूरा शांत भूल जाते हैं, बिल्कुल सरल हो जाए, बुला करके खूब दहेज दे करके खूब बड़ी आडंबर से शादी करा, वही है ये उनके विशेष, यद्यपि वही उनके विलास विग्रह है, लेकिन फिर भी आपने सेवक रूप में भाई बने हुए हैं, लीला रस को पोषण करने के लिए ऐसे ऐसे कभी अमर्ष, कभी क्रोध, कभी मत भिन्नता, कभी इस पर दिखाते हैं तो इसमें लीला पुष्ट होगा, इसलिए इस प्रकार भी लीला करते हैं। ऐसे अनेक लीला है जिसमें भगवान से मतविरुद्ध होता है, बिल्कुल होते हैं, लेकिन होते पर भी भगवान ने चरण बिल्कुल शांत हो जाते हैं, ले दे करके हमेशा उनका एक ही लक्ष्य रहता है, कैसे ये अनुज मेरा शांत रहे, वो खुश रहे, उन्हीं के गुस्सा कभी नहीं देख सकते, हमेशा काया जैसे छाया के साथ रहता है, छाया जैसे काया के साथ रहता है, ऐसे बलराम कृष्ण के साथ रहते हैं, हर लीला में उनके साथ रहते हैं। इस प्रकार अगर कृष्ण का कोई अनुग्रह प्राप्त करना चाहता है तो उसको श्री बलराम का अनुग्रह प्राप्त करना चाहिए। बलराम का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए दुर्योधन जैसा बदमाशी पा लिया, आप लोग तो अच्छे हैं, इतने बेकार तो नहीं, दुर्योधन पापी कली के साक्षात अवतार था, जब वो उनको पटा लिया तो हम लोग को बलराम को पटाना बहुत ईजी है, इसलिए प्रभुपाद जी ने जागा जागे में कृष्ण बलराम, आप लोग को भी सौभाग्य है कृष्ण बलराम विग्रह है, तो बलराम जी को मैंने क्या करना, उसको बस में करना बहुत ईजी है, थोड़ा सा कुछ उनको प्रार्थना करो, माला पहना दो, मधु मधु पिला दो, हो जाएंगे बस, सेवा करो स्वल्प सेवा में, कम सेवा में बलराम जी प्रसन्न हो जाए, और बलराम जी प्रसन्न हो जाए तो कृष्ण तो फिर आप नायब होंगे, भैया वो जैसे बोलेंगे उसको अग्रज का बात मानते होंगे, तो इसलिए बलराम जी आज उनके आविर्भाव तिथि बना करके हर साल एक और भी चांस देते हैं कि अगर बलराम को हम सही भाव से सेवा करें और उनको प्रसन्न कर दे तो कृष्ण को प्रसन्न करना सुगम हो जाएगा। तो कृष्ण भक्त को ये चांस लेना चाहिए इनडायरेक्ट वे, डायरेक्ट वे में कृष्ण को प्रसन्न कर नहीं सकता, लेकिन ये भक्त भगवान है, सेवक भगवान है, उनको प्रसन्न किया जा सकता है, बड़े आसानी से किया जा सकता है। तो इसे आसान तरीके से बलराम को प्रार्थना करके प्रसन्न करके कृष्ण की कृपा को प्राप्त किया जा सकता है। बोलो श्री बलराम भगवान की, श्री अनंत शेष भगवान की, समवेत भक्त वृंद की।
धन्यवाद करेंगे। और आज शाम को भी सायंकाल 4:30 से 6:30 कथा रहेगी, आप लोगों से निवेदन है अवश्य आइए, कथा का आनंद उठाइए। हरे कृष्ण।